अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी, उसने समर्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच समर्थ। समर्थ अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, किस बात के लिए आप हमें थैंक यू बोल रही हैं? अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, सब कुछ जो आपने हमें दिया, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट। उसकी ये बात सुनकर समर्थ ने अर्पिता के गाल पर किस करते हुए कहा, उसके लिए आपको हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से सो जाइए, हम बस 2 मिनट में आते हैं। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ रूम से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वापस रूम में आया और उसने देखा अर्पिता गहरी नींद में सो गई थी। समर्थ ने उसे नहीं जगाया और चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गया। अगले दिन सुबह राजमहल में इप्सिता की जब आंख खुली तो उसने देखा कि बेड के बगल में अभिमन्यु नहीं था। वो हड़बड़ाते हुए उठी, उसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। जब अभिमन्यु वहां पर नहीं दिखा तो इप्सिता ने बेड से उतरकर वॉशरूम के पास जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, अभिमन्यु क्या अंदर हैं? अंदर से आवाज़ आई, हाँ हम अंदर हैं। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अभिमन्यु ने कहा, अपने कपड़े निकाल लीजिए, हम अर्पिता और समर्थ से मिलने चल रहे हैं। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो सीधे अपने कपड़े निकालने लगी। थोड़ी देर में अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकला, उसने टॉवल बांध रखी थी और उसके बाल गीले थे। वो अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकला। उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, सिलेक्ट कर लिया आपने कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हम आज ये पिंक वाली साड़ी पहन रहे हैं। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया और इप्सिता कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। अभिमन्यु ने ब्लैक कलर का 3-पीस कोट पेंट निकाला और उसे पहनकर वो शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने बालों को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में इप्सिता साड़ी पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली और ब्लो ड्रायर लेकर अपने बालों को सुखाने लगी। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बस फटाफट रेडी हो जाइए, हमें अर्पिता से मिलना है। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि अभिमन्यु अर्पिता के लिए कितना ज़्यादा परेशान है। उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी आपकी बहन आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तो आपको तो इतनी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हम जानते हैं और हम अर्पिता और समर्थ को लेकर परेशान नहीं हैं, बल्कि हम उन लोगों के रिश्ते को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से समर्थ अर्पिता को यहाँ से लेकर गया है वो हमें थोड़ा सा खटक रहा है, हमें आज उसे ही क्लियर करना है, आप फटाफट रेडी हो जाइए। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा और अपने फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। इप्सिता को अभिमन्यु की पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि अभिमन्यु अर्पिता को लेकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो उसके लिए जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। इप्सिता ने जल्दी से अपना मंगलसूत्र और साड़ी का मैचिंग एक नेकलेस पहना और वो अच्छे से रेडी हो गई। छोटा सा सिंदूर और एक हाथ में चूड़ी और दूसरे हाथ में वॉच पहनकर इप्सिता काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। अभिमन्यु जैसे ही बालकनी से बात करके वापस आया, उसने इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलें। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे लोग सीधे अपने रूम से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि नरेंद्र और पल्लवी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे और कियारा अदिति चुपचाप वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु और इप्सिता को सीढ़ियों से उतरते देखा तो पल्लवी नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराई। नरेंद्र ने पल्लवी को कुछ इशारा किया, पल्लवी उठकर खड़ी हो गई। उसने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है अभिमन्यु, अपनी बहन के कारनामों को सुधारने जा रहे हैं क्या? वैसे आपका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि रात भर आपको नींद तो नहीं आई होगी, है ना? और भाभी सा, वो तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली हैं, और निकलेंगी भी कैसे, उनकी बेटी ने उनकी नाक चौकटवा दी। इप्सिता पल्लवी की ये बातें सुनकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अभिमन्यु गुस्से में अपने चाचा चाची की तरफ बढ़ा कि तभी इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ा और अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए कहा, अभिमन्यु चलिए हमें देर हो जाएगी। इतना बोलकर इप्सिता अभिमन्यु को लेकर वहां से बाहर निकलने लगी। तभी पल्लवी ने फिर से अपनी जहरीली जबान खोली और बोली, हाँ हाँ अब और कितनी देर होगी, जितनी देर होनी थी पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आपकी बहन ने अपने रंग पहले ही दिखा दिए हैं, समर्थ के साथ जिस तरह उसने गुलछर्रे उड़ाए हैं उससे तो अब। पल्लवी बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और पल्लवी के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, बस बहुत हो गया, आपको कोई हक नहीं है चाची सा कि आप हमारी बहन के बारे में इतना सब कुछ बोलें। अभिमन्यु पल्लवी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था और गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। जैसे ही अभिमन्यु उसके इतने करीब आया, नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। इप्सिता जल्दी से अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु के सीने पर हाथ रखकर उसे पल्लवी से थोड़ा दूर करते हुए कहा, अभिमन्यु क्या कर रहे हैं आप, वो जानबूझकर इस तरह की बातें बोल रही हैं और आप उनके बहकावे में आ रहे हैं, इग्नोर करिए उन्हें और चलिए हमारे साथ। इप्सिता अभिमन्यु को समझा रही थी कि अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रुकिए, सबसे पहली बात तो आप अब हमारी बहन के बारे में और कुछ भी गलत नहीं बोलेंगी, वरना। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी नरेंद्र उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, वरना क्या कर लेंगे आप। अभिमन्यु उनकी बात सुनकर नरेंद्र की तरफ देखने लगा।
उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये हमारे घर का मैटर है और आप लोगों को इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भूलिए मत कि आप इस वक्त यहाँ राजमहल में खड़े हैं और हम यहाँ के राजा हैं। हम आपके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नरेंद्र अभिमन्यु को घूरते हुए देख रहा था, तभी पल्लवी ने कहा, वाह जी वाह, आपकी बहन चाहे गलत भी करे तो अच्छा और हम बोले भी ना। उनकी ये बात सुनकर अभिमन्यु को काफी गुस्सा आया और अभिमन्यु ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मुनिम जी इधर आइए। अभिमन्यु ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए मुनिम जी को बुलाया और मुनिम जी भागते हुए बाहर आए और अभिमन्यु के पीछे खड़े होते हुए बोले, क्या बात है राजा सा? जैसे ही मुनिम जी ने अभिमन्यु को राजा सा कहा, नरेंद्र गुस्से से तिलमिला उठा। अभिमन्यु मुनिम जी की तरफ देखते हुए बोला, मुनिम जी हम अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन शायद चाचा सा और चाची सा को सुख शांति पसंद नहीं है। वो जब तक यहाँ रहेंगे हमारे घर की सुख शांति भंग होती रहेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप चाचा जी को उनका हिस्सा दें और उनके लिए राजमहल से कुछ दूर पर जो दूसरा राजमहल है वो उनके नाम कर दीजिए और इनका सारा सामान वहीं पहुँचा दिया जाए। चाचा सा अपने पूरे परिवार के साथ उस महल में रहेंगे और उन्हें अपने परिवार के साथ जो करना है वो करें। जब तक वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तब तक हम उनके परिवार के बीच में दखल नहीं देंगे और वो हमारे परिवार के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। सारे पेपर रेडी करवा दीजिए। इतना बोलकर अभिमन्यु उन दोनों को घूरते हुए देखने लगा। तभी उसकी नजर कियारा और अदिति पर गई। उसने मुनीम जी की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी हमारी दोनों बहनों के लिए इस महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन चाचा जी और चाची जी के लिए नहीं। उन दोनों को अब वापस यहाँ पर आने की अनुमति कभी भी नहीं होगी।
क्या चाचा और चाची इतनी आसानी से अभिमन्यु की बात मानकर वहाँ महल छोड़कर चले जाएंगे और हार मान लेंगे अभिमन्यु के आगे, या फिर अभी कुछ और बचा है चाचा और चाची की तरफ से? क्या अभिमन्यु फिर से उन दोनों को किसी भी चाल में कामयाब होने देगा? क्या लगता है आप लोगों को, बताइए कमेंट में। आप लोग में से तो कोई कमेंट ही नहीं करता।